पृष्ठ संख्या 225 प्रकीर्ण। तबले के विभिन्न घराने तथा परंपराओं का विस्तृत विश्लेषण कर देने के पश्चात अंत में अब हम ऐसे कलाकारों का उल्लेख शेष रह जाता है जिनके विषय में पूर्ण जानकारी के अभाव में घराने की परंपराओं में जिनके नाम सम्मिलित नहीं हो सका है, किंतु अच्छे तबला वादक के रूप में जिनका व्यक्तिगत योगदान महत्वपूर्ण रहा है। हकीम मोहम्मद करम इमाम की पुस्तक मौदन उल मौसिकी में 19वीं शताब्दी के कलाकारों की जानकारी प्राप्त होती है। लेखक ने अपनी पुस्तक में अनेक तबला वादक तथा नक्कारा वादकों का परिचय दिया है। ओनाम निवासी अघावन 19वीं शताब्दी में हुए थे। तबला तथा नक्कारा वादन में वे कुशल थे। वे लखनऊ घराने से संबंधित थे, किंतु उनके गुरु का नाम प्राप्त नहीं हुआ। ओनाम निवासी धूरन खां प्रसिद्ध कलाकार अहमद खां के दामाद थे। वे तबला तथा नक्कारा वादन में कुशल थे। वे वाजिद अली शाह के युग में हुए। छिद्दा खां तबला वादक रामपुर के नवाब कल्बे अली खां सन 1864 ईस्वी से सन 1887 के दरबार के आश्रित कलाकार थे। इनके उपरांत रहीम खां, हसन खां, डाढ़ी, अमीर खां आदि तबला वादक तथा कासिम खां, मखदूम बख्श, घसीट खां, बनारस के सुजान खां, झांसी के रघुनाथ सिंह, ओनाम के झब्बू खां आदि नक्कारा वादक 19वीं सदी के प्रख्यात कलाकार थे। कुदौ सिंह घराने के स्वामी संत शरण मस्त, जो स्वामी राम शंकर दास पागल दास जी के गुरु रहे, वे तबला पखावज के उत्तम कलाकार हुए। बिहार के नेपाली बाबू भी तबले के उत्तम कलाकार थे, जिनकी गुरु परंपरा में विशेष विषय में विशेष जानकारी प्राप्त नहीं होती। 20वीं शताब्दी के विगत वर्षों में तबले के क्षेत्र में सैकड़ों हजारों ऐसे नाम मिलते हैं जो घरानों की वंश परंपराओं में सम्मिलित नहीं किए जा सके हैं। इनमें से कुछ तो अपने आप में अद्वितीय रहे हैं। इन सबके मात्र नामोल्लेख से भी अनेक पृष्ठ भर सकते हैं। संभव है कि इस चर्चा में कुछ महत्वपूर्ण विद्वानों एवं कलाकारों के नाम छूट गए हों। मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। पृष्ठ संख्या 226 पखावज तबला और महिला कलाकार। संगीत जैसी सृजनात्मक एवं विश्वव्यापी कला देश प्रांत जाति धर्म या स्त्री पुरुष के लिंग भेद की सीमा से परे है। वस्तुतः उसे इस प्रकार की मर्यादा में बांधना ही अनुचित है। फिर भी यह देखा गया है कि भारतीय संगीत के अवनतिवादियों पर एक लंबे अरसे से केवल पुरुष वादकों का ही एकाधिकार रहा है। फलतः आज 20वीं सदी के अंतिम काल में भी किसी कलाविद महिला को तबला वादन का क्षेत्र व्यावसायिक रूप से अपनाते देख सभ्य समाज के स्त्री पुरुष आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि अबला और उसका व्यवसाय तबला। भारतीय संगीत की तीनों विधाएं गायन, वादन और नृत्य के साथ महिलाओं का सदियों से घनिष्ठ संबंध रहा है। वीणापाणी देवी सरस्वती को संगीत की तीनों विधाओं की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। अतः संगीत में नारी शक्ति की प्रतिष्ठा और उसके वर्चस्व को मनुष्य युगों से स्वीकार करता आया है। वेद काल महाकाव्य काल में महिलाएं पुरुषों की भांति ताल वादन में दक्ष थीं, जिसके कई उदाहरण हमें मंदिरों एवं गुफाओं के प्रस्तर शिल्पों तथा मूर्तियों में प्राप्त होते हैं। किंतु यवन काल के पश्चात स्नेह स्नेह इस क्षेत्र में रानी इस प्रकार पिछड़ गई कि आज 21वीं सदी के प्रारंभ वर्ष में भी उसे ताल वादन के क्षेत्र में वह स्थान और प्रतिष्ठा नहीं मिल सकी जो उसे दूसरी विधाओं में सहजता से प्राप्त हो सकी है। सुंदरता, लालित्य और कंठ का माधुर्य नारी की ईश्वर प्रदत्त धरोहर है। अतः यह देखा गया है कि नारी हमेशा से गीत, भजन, लोरियां आदि गान प्रकारों को गाती आई हैं और त्योहारों एवं परिवार के मंगल प्रसंगों पर नृत्य भी करती रही हैं। इसीलिए तो किसी कलावती महिला को रंगमंच पर गायन अथवा नृत्य प्रस्तुत करते देखकर हमें कभी अचरज नहीं होता, बल्कि इसे हम अत्यंत स्वाभाविक ही समझते हैं। उसी भांति रंगमंच से वीणा, सितार या सरोद जैसे तंतुवाद्य बजाती हुई महिलाओं को देखकर भी हमें विस्मय नहीं होता, क्योंकि विद्या और कला की देवी भगवती सरस्वती की वीणा सहित मूर्ति को हम सदा से पूजते आए हैं। यही कारण है कि मध्य युग की विषम परिस्थितियों के कारण संगीत से दूर हो जाने के बाद भी आधुनिक समय में जब महिलाओं ने संगीत को रंगमंच से प्रस्तुत करना प्रारंभ किया तो उन्हें समाज के भद्र वर्ग ने सहज रूप से स्वीकार कर लिया। किंतु आज भी किसी महिला कलाकार द्वारा पखावज या तबला जैसे ताल वाद्यों को बजाना, चाहे वह सात संगति के रूप में हो या स्वतंत्र वादन के, हमें स्वाभाविक नहीं लगता। अभी 50 वर्ष पहले भी किसी संगीत की महफिल में महिला द्वारा ताल वादन प्रस्तुत करने की केवल कल्पना करना भी कठिन था। आखिर ऐसा क्यों? इसके कई कारण हैं। दुर्भाग्य से हमारे संगीतज्ञों एवं संगीत रसिकों में एक लंबे अरसे से यह भ्रांति फैली है कि अवनद्य वाद्यों का वादन श्रम साध्य होने के कारण महिलाएं तबला अथवा पखावज नहीं बजा सकती। किंतु सोचने की बात है कि केवल अवनद्य वाद्यों के वादन को ही श्रम साध्य कहना कहां तक उचित होगा। पृष्ठ संख्या 227। क्या दूसरी कला प्रस्तुतियों में शरीर को श्रम नहीं करना पड़ता? यदि महिलाएं ध्रुपद धमार जैसी कठिन और मर्दाना शैली का गायन प्रस्तुत कर सकती हैं, वीणा, सितार, सरोद जैसे तंतुवाद्य बजा सकती हैं, भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, कथकली जैसे नृत्यों की एक से एक कठिन मुद्राएं खूबसूरती और सहजता से प्रदर्शित कर सकती हैं, तो फिर उनसे तालवाद्य ही क्यों अछूते रह गए हैं? वर्तमान युग की सुशिक्षित महिलाएं आज असंभव जैसे कार्य अति सहजता से करने लगी हैं, तो तालवाद्य बजाना कौन सा कठिन काम है? किसी भी कार्य की पूर्ति के लिए शारीरिक श्रम के साथ साथ मानसिक शक्ति की भी आवश्यकता होती है। तबला या पखावज बजाना एक कला है। यह कोई अखाड़ा या जंग नहीं कि उसमें केवल ताकत का ही प्रयोग होता है। मेरे विनम्र मतानुसार तो पखावज या तबला वादन के लिए ताकत से अधिक बुद्धि कौशल की योग्य गुरु से शिक्षा प्राप्त की तथा दीर्घ साधना द्वारा बोल निकास में शुद्धता और मुलायमियत लाने की आवश्यकता होती है। महिलाओं की मानसिक प्रकृति एवं शारीरिक रचना के अनुसार उनके वादन में मृदुता का होना स्वाभाविक है, परंतु बजाते समय उनके बोल निकास में कहीं अस्पष्टता अस्पष्टता दिखाई दे तो निश्चित ही वह उनकी अपनी व्यक्तिगत त्रुटि है। स्त्री या पुरुष के लिंग भेद से इसका कोई संबंध नहीं है। वस्तुतः यहाँ प्रश्न श्रम का नहीं बल्कि आदत का है। पिछली कई सदियों से ताल वाद्यों पर पुरुषों का ही एकाधिकार रहने के कारण अवनद्य वाद्य बजाती हुई महिलाओं को देखने की हमारी आदत सी छूट गई है। अतः केवल श्रम साध्य होने के कारण महिलाएं पखावज और तबला जैसे ताल वाद्य नहीं बजाती। यह तर्क एक बहुत बड़ा भ्रम ही है। प्राचीन काल की अनेक गुफाएं जैसे भाजा गुफा, कारला गुफा, अजंता, एलोरा, पवाया, अमरावती, बदामी इत्यादि में भुवनेश्वर, कोणार्क, बेलूर, हलेविद, हम्पी एवं दक्षिण भारत के अनेक मंदिरों में तथा हमारे पड़ोसी देश नेपाल, कंबोडिया, इंडोनेशिया आदि के मंदिरों में भी तालवाद्य बजाती हुई कलावती महिलाओं की अनेक मूर्तियां एवं प्रस्तर शिल्प हमें देखने को मिलते हैं, जिनका समय ईसा की दो सदी पूर्व से लेकर ईसा की 18वीं सदी तक का रहा है। उस काल में भी महिलाएं त्रिपुष्कर वाद्य, आंकिक, ऊर्ध्वक, आलिंग्य, ढोल, ढोलक, मृदंग, मर्दल, खोल जैसे ताल वाद्य बजाती होंगी। तभी तो अनेक शिल्पकारों एवं चित्रकारों ने उन्हें अपनी कलाकृतियों में सजोया है। मेरे अपने शोध के अनुसार ईसा के 200 से 300 वर्ष पूर्व का एक प्रस्तर शिल्प हमें भाजा गुफा में मिला है, जिसमें तबले के सदृश ताल वाद्य बजाती हुई महिला की एक मूर्ति देखी जा सकती है। पुरातत्व विभाग की पत्रिका के अनुसार महाराष्ट्र के लोनावला, गिरिनगर के निकट मुंबई पुणे मार्ग पर भाजा नाम की एक प्राचीन गुफा है, जो बौद्ध धर्म के हीनयान पंथ के उन्नति काल में श्रृंग राजाओं के समय में बनी है। यह गुफा 2200 वर्ष पुरानी है। इसके 14वें नंबर की गुफा में 12 फीट ऊंचा एक इंद्रशिल्प अंकित है, जिनमें अंबाड़ी पर बने इंद्र के सामने नृत्य गोष्ठी का चित्रांकन है। नर्तकी नृत्य कर रही है, वीणा वादक वीणा बजा रहा है तथा पास में खड़ी एक स्त्री वादिका सामने रखे दो चर्म वाद्य ताल वाद्यों को दोनों हाथों से बजा रही है। पृष्ठ संख्या 228। वादिका के दोनों हाथ वादन मुद्रा में ताल वाद्य पर रखे गए हैं, अतः स्याही का हिस्सा उसमें दिखाई नहीं देता तथा गट्टे एवं बद्धियां भी नहीं दिखती, किंतु लगभग 2300 वर्ष पहले के उस शिल्प में इस प्रकार की कुछ कमियों का होना स्वाभाविक भी है। भाजा शिल्प का वह ताल वाद्य हमारी आधुनिक तबला जोड़ी का पूर्वज लगता है तथा वर्तमान तबला जोड़ी के साथ उसके सामंजस्य से यह सिद्ध हो जाता है कि आज से 2300 वर्ष पहले भी तबले जैसे ताल वाद्य का प्रचलन भारत में था और उसे बजाने वाली महिलाएं भी थीं। नाट्यशास्त्र के तालाध्याय में आचार्य भरत ने विविध प्राचीन ताल वाद्यों का विशद वर्णन किया है, किंतु उसमें तत्कालीन ताल वादकों की चर्चा नहीं है। केवल नाट्यशास्त्र में ही नहीं अपितु 13वीं 14वीं सदी तक के किसी भी प्राचीन ग्रंथ में ताल वादकों की चर्चा नहीं मिलती। वैसे भी ताल शास्त्र के ऊपर कुछ कम ही लिखा गया है, उसमें भी वादक कलाकारों की चर्चा तो ग्रंथों में नहीं के बराबर ही है। किंतु यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि जिसकी विशद चर्चा नाट्यशास्त्र में मिलती है वह भरतकालीन त्रिपुष्कर वाद्य बजाती हुई महिलाओं की अनेक मूर्तियां विविध गुफाओं एवं मंदिरों में आज भी हम देख सकते हैं। अतः प्राचीन पुस्तकों में उल्लेख न होते हुए भी यह सिद्ध होता है कि नाट्यशास्त्र के पूर्व एवं पश्चात महिलाएं ताल वाद्य बजाती थीं। उन दिनों का त्रिपुष्कर वादन आज के तबला या मृदंग वादन से कहीं अधिक कठिन था। उन दिनों ध्वनि विस्तारक यंत्र नहीं होने के कारण त्रिपुष्कर वाद्य एवं उसका वादन अत्यंत ओजपूर्ण होता था। वास्तव में तीनों मुखों पर वादन करना काफी कठिन कार्य था। जब ऐसा ओजपूर्ण एवं श्रम साध्य वादन उन दिनों महिलाएं करती थीं, तो फिर क्या कारण है कि आज इस क्षेत्र में महिलाएं पिछड़ गई हैं। मध्य युग में अबुल फजल ने आईने अकबरी में अकबर युगीन 36 कलाकारों के नाम गिनाए हैं, किंतु उनमें एक भी मृदंग वादक या तबला वादक का उल्लेख नहीं है। तत्पश्चात की पुस्तकों में भी ताल वादकों की चर्चा नहीं मिलती। हाँ, 19वीं सदी की कुछ उर्दू फारसी पुस्तकों में नकारा वादक, पखावज वादक या तबला वादकों के कुछ नाम जरूर गिनाए गए हैं। सन 1855 के आसपास लिखी गई हकीम मोहम्मद करम इमाम की पुस्तक मौदन उल मुस्की तथा सादिक अली सिताब खां की पुस्तक सरमाए इशरत में विशेष तौर पर मृदंग तबला के कलाकारों के नाम, उनकी वादन शैलियां तथा उनकी विशेषताएं उल्लिखित हैं, परंतु पखावज या तबला की महिला कलाकारों के विषय में कोई जानकारी नहीं मिलती। जबकि दूसरी ओर शिल्प कला और चित्रकला की सैकड़ों कृतियों में तथा राग रागनियों के चित्रों में ऐसी अनेक महिलाएं के चित्र मिलते हैं जिनके हाथों में ढोल ढोलक खोल मृदंग जैसे तालवाद्य दिखाई देते हैं। सदियों से हमारे यहाँ विविध गायन शैलियों का प्रचार रहा है तथा उनके साथ संगति के लिए विविध प्रकार के तालवाद्य भी प्रयुक्त होते आए हैं। मध्य युग की सर्वाधिक लोकप्रिय तालवाद्य मृदंग रहा है जो पखावज के नाम से भी जाना जाता है। पृष्ठ संख्या 229। मध्य युग में ध्रुपद गायकी का बोलबाला था, अतः उसकी संगति के लिए मृदंग का ही उपयोग होता था। हमारे देश में सैकड़ों ध्रुपद गायक हुए तथा उनकी संगत करने वाले अनेक पखावजी भी। उनमें कदाचित कुछ महिलाओं ने भी प्रयत्न किया हो तो वह अनुचित नहीं लगता, किंतु ऐसा अनुमान है कि उन दिनों की सामाजिक परिस्थिति के कारण महिलाओं को प्रोत्साहन नहीं मिला होगा, अतः वे कुछ कर दिखाने का साहस नहीं जुटा सकी होंगी। सामाजिक दृष्टि से यह अंधकारमय युग था। यौनों की रंगीन मनोवृत्ति और भोग विलास में प्रवृत्ति की छाया संगीत की पवित्र धारा पर भी पड़ने लगी थी। संगीत गणिकाओं के कोठे और राज दरबारों के रंग मंदिरों तक सीमित हो गया था और वह आत्मिक आनंद के स्थान पर क्षणिक मनोरंजन और भोग विलास की कीचड़ में फंसने लगा था। ऐसी परिस्थिति में जहां उच्च स्तरीय लोगों में संगीत की प्रतिष्ठा मिट चुकी थी, वहां कुलीन परिवारों की महिलाओं का संगीत से अलग हो जाना भी स्वाभाविक था। जब सभ्य समाज का संगीत से नाता ही टूट चुका था तो वहां महिलाओं द्वारा पखावज या तबला बजाने की बात सोचना भी कठिन था, किंतु फिर भी कदाचित किसी निम्न परिवार की नारी ने उन दिनों ऐसा प्रयत्न किया भी हो तो भला उसे कहां तक सफलता मिल सकती थी। तबले का प्रचार ख्याल गायकी के विकास के साथ साथ हुआ है। कुछ विद्वानों का मत है कि तबला लोकवाद्य से अभिजात संगीत में आया है। कुछ लोगों के मतानुसार भरतकालीन त्रिपुष्कर के ऊर्ध्वक आलिंग हिस्से ही आधुनिक तबले डग्गे का रूप हैं। कुछ लोग मानते हैं कि वह प्राचीन तालवाद दरदुर नकारा इत्यादि का परिष्कृत रूप है, तो कुछ विद्वानों के मतानुसार वह दुक्कड़ संबल जैसे लोकवाद्यों के आधार पर बना है। जो भी हो, परंतु भारतीय संगीत में तबले का प्रवेश एक महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक घटना कही जा सकती है। मुगल बादशाह मुगल शाह रंगीले सन 1719 से सन 1749 ईस्वी के युग के पश्चात भारतीय संगीत में अन्य प्रकार की गायकियां जैसे ख्याल, ठुमरी, टप्पा, गजल, कव्वाली इत्यादि प्रचार में आने लगी थी। यद्यपि ध्रुपद गायकी को श्रेष्ठ समझने वाले घरानेदार एवं खानदानी कलाकार इन गायिकाओं से दूर ही रहे, तथापि निम्न वर्ग के कुछ गायक गायिकाएं इन्हें सीखने एवं गाने लगे। उनके साथ संगति करना पखावज वादक अपना अपमान समझते थे। तदुपरांत पखावज की गंभीर ध्वनि ऐसी सुकोमल सुरीली गायकियों की संगति के लिए अनुपयुक्त भी थी, अतः इन गायकियों की संगति के लिए एक मुलायम तालवाद्य की आवश्यकता महसूस होने लगी, जिसके फलस्वरूप अभिजात संगीत में तबले का प्रवेश हुआ। उन दिनों तबला अपनी प्रारंभिक अवस्था में था। वीरांगनाओं के कोठों से जुड़ने के कारण प्रतिष्ठित वर्ग उसे निम्न कोटि का वाद्य समझते थे और उसे हीन दृष्टि से देखते थे। फलस्वरूप 18वीं सदी के अंत तक संगीत की किसी भी पुस्तक में तबले का नामोल्लेख तक नहीं मिलता, जबकि ख्याल गायकी और उसकी संगति के लिए तबले का प्रयोग एक लंबे अरसे से संगीत जगत में प्रवेश कर चुका था। सन 1854 ईस्वी में लखनऊ में श्री हकीम मोहम्मद करम इमाम ने अपनी पुस्तक मौदन उल मुसिकी में तबला वाद्य तथा उसके वादकों के विषय में पहली बार विस्तृत उल्लेख किया है। पृष्ठ संख्या 230। इससे यह अनुमान किया जा सकता है कि अपनी आरंभिक अवस्था में तबला वाद्य तथा उसके वादकों की सोचनीय दशा रही होगी। आज एक बार फिर से समय ने करवट ली है और यह समय की ही बलिहारी है कि जिस ख्याल गायकी और तबला वादी को ध्रुपद गान शैली और पखावज के सामने हीन समझा जाता था, आज उसी ख्याल और तबले के प्राधान्य ने ध्रुपद गान शैली और पखावज वादी को पछाड़ दिया है। अंग्रेजों के राज्यकाल में पंडित विष्णु नारायण भातखंडे तथा पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जैसे दो संगीत महर्षि पैदा हुए जिन्होंने संगीत की दुर्दशा से व्यथित होकर संगीतोत्थान का वीणा उठाया तथा संगीत की अलौकिकता एवं सार्वभौमिकता से लोगों को परिचित करवाया। इन विष्णु द्वय ने पुस्तकें लिखकर विद्वान कलाकारों के कार्यक्रम मंच से प्रस्तुत करवा कर स्वयं कार्यक्रम देकर अच्छे शिष्य तैयार करके तथा अपने सदाचर चरण एवं लेखों द्वारा जनता में सांगीतिक जागृति लाने का सनिष्ठ प्रयत्न किया। इसके फलस्वरूप संगीत के प्रति समाज में जो हीन भावना थी वह समाप्त होने लगी। पढ़े लिखे लोगों ने उसे अपनाना शुरू किया तथा महिलाएं भी रूढ़ियां तोड़कर गायन वादन नृत्य सीखने एवं इन्हें मंच से प्रस्तुत करने लगी। फिर भी पखावज और तबला वादन के क्षेत्र में महिलाएं आगे नहीं आ पाई। ऐसा नहीं कि स्त्रियों ने इन्हें सीखा ही नहीं, वे सीखती जरूर थीं, किंतु ताल वाद्यों को अपना मुख्य विषय बनाने में वे सदा हिचकिचाती ही रहीं। आरंभ से ही तबला संगति का वाद्य रहा है। अपनी मुलायम वादन शैली और तकनीकी विशेषताओं के कारण वह हर प्रकार के गायन वादन नृत्य की संगति के लिए उपयुक्त सिद्ध हुआ है। अतः संगीत जगत में उसका अपना एक अनिवार्य स्थान बन चुका है। तबले का यह भी सौभाग्य रहा है कि उसके साथ निष्ठावान तबला वादकों का एक ऐसा वर्ग हमेशा ही जुड़ा रहा जिनके सनिष्ठ प्रयत्नों के फलस्वरूप समाज में तबले के प्रति प्रेम आदर चाहत और समझ बढ़ने लगी। इस तरह कोठों पर रहने वाला यह वाद्य आज भारतीय संगीत का श्रृंगार बन गया है और देश विदेश में प्रसिद्धि प्राप्त कर रहा है। इतना कुछ होते हुए भी स्त्रियां मुख्यतः पखावज या तबला वादन को व्यवसाय के रूप में नहीं अपना सकी। यद्यपि हमारे बुजुर्ग उस्तादों एवं संगीत रसिकों से प्राप्त मौखिक जानकारी के अनुसार गत सदी के गाने बजाने वाले परिवारों की कुछ महिलाएं पखावज तथा तबला जैसे ताल वाद्यों को बजाने लगी थीं, तथापि इन कहानियों का कोई लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं होता, अतः इनकी सत्यता पर संदेह किया जा सकता है। परंतु लेखिका ने इन प्रतिभाशाली महिलाओं की कथाओं को यहाँ उद्धृत करना इसलिए आवश्यक समझा है कि इनके प्रयत्नों की अब गणना करना भी तो इनके साथ अन्यायपूर्ण एवं अयोग्य ही होगा।